चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि जोशी, आपकी दोस्त, और मुझे मालूम है आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे।
एक मिनट अंजलि, मेरा नहीं, हमारा, और हमारे इस कार्यक्रम का जिसका नाम है
जब चले शहर की ओर। वैसे नरेन, तुम्हारा इन बड़े बड़े शहरों के बारे में क्या मानना है?
भाई अगर मेरी राय सुनोगी तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे तो आज भी गाँव ही पसंद है। वो सौंधी मिट्टी की खुशबू, वो हरे भरे खेत, ठंडी ठंडी हवाएं, वो सब शहर में कहाँ।
और यहाँ की चकाचौंध?
भाई वो तो लोगों का भ्रम है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर हैं, पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं हैं, लेकिन सिर्फ बड़े शहरों में इसलिए आना कि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसमें मुझे थोड़ी बेवकूफ़ी नजर आती है।
मतलब
ये कि अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई और बेहतर रोजगार की बात न होती तो मैं तो कभी शहर नहीं आता।
इसका मतलब अगर ये सब कुछ तुम्हें गाँव में ही मिल जाता तो तुम शहर नहीं आते?
बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसी चकाचौंध को देखकर आए, लेकिन बस थोड़े ही हफ्तों में उन्हें पता चल गया कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ हीरो बनकर घूमने के लिए।
तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
अरे कविता, यहाँ पर?
अरे राजेश, तुम यहाँ? तुम कब आए?
जब आप समंदर के साथ बातें कर रही थी। ये लो भेलपुरी।
ओह थैंक्स, भेलपुरी मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम यहाँ कैसे?
मैं तो यहीं पास में रहता हूँ और रोज यहाँ समुद्र के किनारे टहलने के लिए आता हूँ। तो ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे?
बस ऐसे ही, कहीं अकेले जाकर बैठने का दिल कर रहा था तो यहाँ आ गई।
वैसे ये जगह अकेले आने वालों के लिए नहीं है मैडम, आओ थोड़ा टहल लेते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा है। चलो उठो, उठो भाई,
चलो।
वैसे तुम इतनी गुमसुम उदास यहाँ अकेले क्यों बैठी थी? कोई खास बात?
बस यूं ही। क्यों, अकेले समुद्र के किनारे बैठना गुनाह है क्या?
तो पक्का है कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद सता रही है?
हाँ, अब सिर्फ याद ही तो कर सकती हूँ उन्हें। वहाँ उनसे मिलने का, उनसे बात करने का तो हक मैं कब का हो चुकी हूँ।
कविता, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछो तुमसे।
पूछो।
तुमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि तुम्हारे घर वालों ने तुमसे रिश्ता ही खत्म कर दिया?
दरअसल मैं शादी से पहले अपने घर परिवार को छोड़कर किसी से बिना कुछ कहे शहर आ गई।
क्यों, लड़का पसंद नहीं था?
अरे नहीं, वो बात नहीं थी।
तो?
मैं काम करना चाहती थी राजेश, नौकरी करना चाहती थी, गांव के बाकी लड़कों की तरह मैं भी शहर आना चाहती थी, और पिताजी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी।
फिर
क्या, 4 दिन रह गए थे शादी को, जब मैं बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर से शहर के लिए निकल पड़ी।
तुम अकेली मुंबई आ गई?
अरे नहीं, गांव के एक लड़के सोबन की मदद से मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में सोबन की बौजी कल्पना दीदी रहती हैं। सोबन के भाई को गुजरे तो 2 साल होने को आए, लेकिन कल्पना दीदी ने मेरी बहुत मदद की।
और वो सोबन?
उसे दुबई जाना था, इसलिए वो दिल्ली से दुबई की फ्लाइट लेकर दुबई चला गया।
और वहाँ गाँव में?
गाँव में सबने सोचा कि मैं सोबन के साथ भाग गई। बस इसके बाद क्या था, गाँव में मेरे बारे में क्या क्या बातें हुई मुझे नहीं पता।
फिर तुम मुंबई कैसे आई?
लंबी कहानी है। दिल्ली में अच्छा काम ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। बड़े शहरों में अकेली लड़की के लिए काम ढूंढना आसान नहीं होता, ये तो तुम जानते ही हो राजेश। तरह तरह के लोगों से बचना पड़ता है, लेकिन कल्पना दीदी ने एक पल भी मेरा साहस नहीं टूटने दिया। हर रोज एक नए हौसले के साथ निकलती थी। जब साड़ियों के शोरूम में काम मिल गया तो मुझे लगा मंजिल की ओर मेरा पहला कदम सफल रहा। फिर शोरूम की ब्रांच मुंबई में खुली तो कुछ स्टाफ को मुंबई के बड़े स्टोर में काम करने का मौका मिला और मैंने मना नहीं किया। बस इस तरह छोटे से गांव से निकलकर मैं मुंबई आ गई।
वाकई मानना पड़ेगा कविता, तुम बहुत हिम्मत वाली हो।
अच्छा मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम मुंबई कैसे आई?
अरे मैं आया नहीं, बल्कि यहीं पैदा हुआ हूँ, आमची मुंबई, और यहीं पला बड़ा हूँ।
अच्छा, मतलब तुम्हारे माता पिता यहीं?
अरे नहीं नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है। जब होश संभाला तो खुद को अनाथालय में पाया। वो बताते हैं कि पैदा होते ही कोई मुझे उस अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ गया था। बस उसी दिन से वही अनाथालय मेरा घर हो गया।
ओ, मुझे लगता था जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ, मगर मेरे पास मेरे घर वालों की यादें तो हैं, तुम्हारे पास तो
वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी कविता, मैं ये जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसे यूँ दुखी रखकर आंसुओं में डुबोना नहीं चाहता। हर पल खुश रहता हूँ और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। और मैं तो कहता हूँ कविता, तुम्हें भी नहीं देखना चाहिए। अरे नजरें उठाकर देखो, हमारे चारों तरफ कितनी खुशियां बिखरी हुई हैं, हाँ? तो हम क्यों ना खुशी से जिएं? क्यों हम कल को याद करके आंसू बहाते रहें?
शायद तुम ठीक कहते हो। वैसे भी कुछ दिन में माया आ जाएगी और मुझे घर वालों की खबर मिल जाएगी। अच्छा राजेश, अब मुझे चलना चाहिए, ज्यादा देर हो गई तो हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा।
ठीक है, तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं?
नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय।
ओके बाय।
दस, बीस और ये तीस, ये हुए पचास और पाँच। सुबह से शाम तक सिर्फ 55 रुपये और उधार 124 रुपये। ये उधारी तो मुझे एक दिन खा ही जाएगी। समझ में नहीं आता किसको मना करूं और किसको मना ना करूं।
चंदर, ओ चंदर।
अरे भाई दर्शन, तू और कैसा है भाई, बम्बई से कब आया?
बस आज ही आया हूँ। तू सुना, तूने दुकान खोल ली? वाह बेटा, तरक्की कर रहा है।
हाँ यार, अब चार पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही था, मैंने सोचा दुकान खोल लूं।
बहुत बढ़िया किया। चल इसी बात पर एक टॉफी लेता हूँ, एक माचिस की डिब्बी भी देना यार, कमबख्त बारिश ने तो ठंड बढ़ा दी है। बम्बई में भी बहुत बारिश हुई थी पिछले महीने।
ये ले माचिस। अच्छा दर्शन, कुछ पैसे?
हाँ माँ ने बताया था। कितने पैसे हैं पिछले?
110 रुपये।
ये ले 50 रुपये।
यार बस 50 रुपये?
अरे यार अभी ये रख ले, बाकी आगे लगा लेना।
क्या यार तू भी, चल ठीक है।
वैसे अभी कहाँ जा रहा?
बस घर ही जा रहा था।
चल फिर घर बाद में जाना, पहले मेरे साथ चल।
कहाँ?
अरे चल तो सही।
अच्छा फिर एक मिनट, दुकान बंद कर दो। चल।
मधु।
दीदी आप, बच्चे सो गए?
हाँ बच्चे तो सो गए, पर तू दरवाजे पे खड़ी किसका इंतजार कर रही है? कोई आने वाला है क्या?
वो दीदी ये अभी तक नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था।
कौन, चंदर?
हाँ।
अरे आ जाएगा, तू फिक्र मत कर, मिल गया होगा कोई दोस्त रास्ते में।
हाँ हो सकता है, लेकिन दीदी रात का वक्त है और बीच में जंगल भी पड़ता है।
अरे तू चिंता मत कर, आता ही होगा। जा तू आराम कर, मैं दरवाजा खोल दूंगी जब आएगा।
नहीं दीदी आप आराम कीजिए, मैं इंतजार करूंगी।
ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा चलती हूँ।
जी। हे भगवान, पता नहीं कहाँ रह गए हैं वो, माता रानी उनकी रक्षा करना।
अब बस कर यार, तू और कितनी पिएगा?
अरे तू भी यार, इतने दिनों बाद गांव आया हूँ, थोड़ी मस्ती करने देगा कि नहीं?
पता है चंदर, जब से घर आया हूँ ना यार, एक चीज बहुत मिस करता हूँ, समंदर। यार बम्बई के समंदर के किनारे कितनी बोतलें खत्म की हैं हमने।
वैसे इन सब बातों का कुछ ज्यादा,
अब तूने तो समंदर तक नहीं देखा, करेक्ट? जहाज भी नहीं देखा होगा।
नहीं यार, पता नहीं कब देखूंगा ये सब।
अरे जिसने समंदर नहीं देखा उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा चंदर। तुझे पता है वहाँ जुहू में?
जुहू?
अरे एक जगह है बम्बई में जहाँ अमिताभ बच्चन रहता है, मैंने उसका घर देखा है और मिला भी हूँ उससे।
कैसे?
अरे वो शूटिंग कर रहा था उस फिल्म के लिए, वो क्या था उस फिल्म का नाम, याद नहीं आ रहा है। अरे मैं तो बस वहाँ इंटरव्यू देने गया था, अब मैं भी होटल का काम छोड़कर इसी लाइन में चला जाऊंगा। अरे बहुत घूमने को मिलता है फिल्म लाइन में।
वैसे तू क्यों नहीं चलता मेरे साथ मुंबई, है? अरे क्या यहाँ दुकान चला रहा है, बोरिंग लाइफ है तेरी चंदर, बहुत बोरिंग है।
वैसे वहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है क्या?
अरे वहाँ सबके लिए काम है, तेरे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर।
तो अंजलि, सुना तुमने क्या क्या बातें बता रहा था दर्शन चंदर को मुंबई के बारे में? अब तुम ही बताओ, ये भी कोई वजह हुई शहर आने की?
अब चंदर को भी सिर्फ शहर की चकाचौंध ही नजर आ रही है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कितना खून पसीना, भूख, प्यास और मेहनत छिपी है उसे ये नहीं पता। लेकिन जो लोग गांवों से शहर आए हैं, आओ उनकी राय सुनते हैं। उन्हें क्या लगता है, क्या शहर में सचमुच सपने पूरे हो जाते हैं? क्या शहर में सचमुच वैसा ही होता है जैसा वो सोच कर आए थे?
जो लोग गांव से शहर आते हैं, आमतौर पर कोई ना कोई सपना उनका होता है, पर यहाँ पर आकर उनका यह सपना धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर उनको इतने ऊंचे पद पर नौकरी प्राप्त नहीं होती है और छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन करने लगते हैं।
सबके सपने पूरे नहीं होते हैं, किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। जिन लोगों के अपने सगे संबंधी अच्छी जगह पर हैं, होटलों में, कंपनियों में, गवर्नमेंट जॉब में, वो लोग सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने भाई को खींचते हैं।
ये बात सच है कि गांव से शहर आने वाले व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन सपना पूरा वही कर पाता है जिसके अंदर लगन और बुद्धि होती है। सपना अपने व्यक्तित्व के हिसाब से हो तो अब सपना पूरा हो सकता है।
तो दोस्तों, सुना आपने, कुछ लोग कहते हैं कि शहर में उनके सपने पूरे हो जाते हैं,
मगर नरेन कुछ लोगों ने ये भी तो कहा है कि सपने पूरे करने के लिए आगे की सोच और जीवन कौशल की जरूरत है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे गढ़वाली अभिनेता अशोक मल जी का सपना पूरा हुआ। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में।
उत्तराखंडी फिल्मों ने पिछले 20 वर्षों में काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। इस बीच कई प्रमुख फिल्में आई हैं और इन 20 वर्षों के दौरान कौथिक, मेगा, पंटवारो, गर्जवाएँ जैसी कई फिल्में आई हैं और इन फिल्मों के मार्फत कई महत्वपूर्ण कलाकार उत्तराखंड के सामने आए हैं। ऐसे ही कुछ चंद कलाकार जो आज बॉम्बे में सक्रिय हैं, उनमें से कलाकार हैं श्री अशोक मल।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1978 में मुंबई आया और सिनेमा के हिसाब से वो दौर बड़ा कठिन दौर था, क्योंकि उस समय इतना स्कोप था नहीं, खाली फीचर फिल्में हुआ करती थी। शुरू से बचपन से फिल्मों में काम करने की इच्छा थी, तो हमने भी रामलीला से शुरुआत करी और मन में ज़रूर था कि हम फिल्मों में काम करें। मेरे कई स्टेज शोज़ देखे थे कापड़ी जी ने, उन्होंने रिकमेंड किया कि अशोक को देख लो, अगर तुमको तुम्हारी किसी भूमिका के लिए जमता हुए तो ले लो। और शील चौधरी जी ने मुझे ये चांस दिया काबड़ी जी के मार्फत। तब ये नहीं पता था कि फिल्में बनती कैसी, मेकिंग कैसी होती है उसकी। सामने कोई भी नहीं है, खाली कैमरा है, हमने रोना है, हंसना है और उसको गाली देना है, चिल्लाना है, बड़ा अजीब लगा। लेकिन आज की डेट में इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़रा तैयारी से आना चाहिए, हम लोग जैसे ब्लाइंडली नहीं आना चाहिए, अपने को प्रिपेयर करके अगर आदमी आए तो किसी गाँव से आए, किसी कोने से आए, इसमें कोई दोहराने की वो सफल हुए। करीब 26-27 साल की उम्र में हमने स्टार्ट किया, तो ऑलरेडी हम तो लेट थे, उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो था नहीं हमको इधर उधर से। जैसे 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे बैकआउट हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें मुझे रमेश दादा का वो सहारा मिला, इन्होंने एक तो मुझे फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट किया, दूसरी एक और चीज़ कही कि अशोक जब तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे होते तुम क्यों नहीं उस वक्त में अपना कोई बिजनेस जमाओगे। ये आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ सर, जो फाइनेंशियली जो भी स्थिति है, रमेश दादा की एडवाइस से हुआ। जब मैं पिथौरागढ़ में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में 11th और 12th की पढ़ाई कर रहा था, पिथौरागढ़ में एक ही सिनेमा हॉल हुआ करता था, उसका नाम है नटराज सिनेमा। उस नटराज सिनेमा हॉल में मैं गेट कीपर की नौकरी मैं सेलेक्ट हुआ। मैंने उस सिनेमा हॉल में 2 साल नौकरी करी, उसके बाद करीब 5 या 6 साल 10 साल के बाद उसी सिनेमा हॉल में मेरी फिल्म लगी और मैंने अपनी फिल्म अपनी माताजी को दिखाई, माँ को। कई लोग जो बिना प्रशिक्षण लिए हुए चले आ रहे हैं, आना बुरी बात नहीं है, संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, जीवन में संघर्ष चलता है, लेकिन ये तो मैं आने वाले लोगों से ज़रूर कहूँगा कि करेक्ट जानकर, देख परख, शिक्षा लेकर के आइए, या स्ट्रगल कर शुरू कर दिया है तो तो उसके साथ साथ में ये शिक्षा लेना जरूर सी चालू रखिए, कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण जरूर लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद मल जी, आपने अपनी संघर्ष गाथा सुनाई। और निश्चित रूप से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उन युवाओं को जो फिल्मों का ख्वाब देखते हैं और बॉम्बे आने की सोच रहे हैं पहाड़ से, उन्हें ज़रूर कुछ प्रेरणा मिलेगी और शायद उनके संघर्ष के दौर में यह उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सेरा सजू चा तगड़ा बनी आज व्योला मुंडमा, सेरा सजू चा तगड़ा बनी आज व्योला।
वैसे नरेन, बहुत लोग अपने दोस्तों की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे बिना तैयारी किए निकल चलते हैं शहर की ओर। तो जरूरत है एक ऐसी चीज की जिससे आप पता लगा सकें कि कब कोई बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है, फिर चाहे वो किसी जगह के बारे में बता रहा हो या किसी नौकरी के बारे में या फिर उसका कोई निजी अनुभव ही क्यों ना बता रहा हो। कोई तरीका ऐसा होना जरूर चाहिए ये जानने का कि उसकी बातों में सच कितना है और कितना मसाला।
अंजलि, क्यों ना ये बात भैजी से पूछें, शायद उनकी उसे नीली गठरी में कोई ऐसा यंत्र मिल जाए।
गठरी नहीं नरेन, पोटली पोटली।
हाँ हाँ वही।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
अरे अंजलि, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नरेन।
नमस्कार भैजी।
भाई आज कैसे याद किया आपने भैजी को?
भैजी दरअसल हम ये जानना चाहते थे कि क्या आपके पास ऐसा कोई यंत्र है जिससे हमारे श्रोता ये पता लगा सके कि कौन फेंक रहा है और कौन सच कह रहा है।
ये हम इसलिए पूछ रहे हैं भैजी कि कई बार हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित किया होता है। जैसे कुछ लोग बिना कोई जानकारी के किसी की बातों में आकर फिल्मी दुनिया से आकर्षित होकर शहर आते हैं, तो ऐसा कोई यंत्र जिससे सच्ची बातें पता चल सके।
मजाक कर रहे हो? यंत्र वंत्र तो मेरे पास नहीं है भाई, लेकिन हाँ आप अपना यंत्र खुद बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूँ।
ओह तो फिर क्या बात है, पेन और पेपर दोनों तैयार हैं हमारे पास।
ठीक है, तो अगर कोई इंसान आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, जैसे कि आपसे कह रहा है यार शहर चल तेरी लाइफ बना दूंगा, शहर जाकर तुम बहुत पैसा बनाओगे, 2 महीने में तुम 10,000 बना सकते हो, एक से बढ़कर एक नौकरी है वहां पर, तो ऐसे में आप उनसे जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना अच्छा है, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, क्योंकि अगर वो फेंक रहा है तो उसके जवाब उतने ही बिना मतलब के होंगे और खोखले होंगे।
हाँ ये तो है, बचपन में मम्मी पापा भी तो हमारी चोरी ऐसे ही पकड़ते थे ना।
बिल्कुल ठीक। दूसरी ओर इस बात पर भी गौर करो कि आपको अगर शहर की कोई चकाचौंध दिखा रहा है तो ऐसे में उसकी बातों से तभी आकर्षित होना चाहिए जब उसने खुद शहर में अपना कोई मुकाम बनाया हो। अंजलि और नरेन
जी,
मैं ये कहना चाहूंगा कि सच और झूठ में उतना ही फर्क होता है जितना कि दूध और पानी में। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ अंजलि कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, सारी हीरोइनें मुझ पर मरती हैं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी?
भैजी सच कहूँ मैं तो जरूर विश्वास कर लूंगी।
वाह 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 वाह, क्या चढ़ाया है, इसके लिए शुक्रिया अंजलि। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो बस यही फर्क होता है सच और झूठ में। इसी तरह जब कोई आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करता है और आपको कहता है कि शहर में जाते ही एक बड़ी सी नौकरी मिल जाएगी, एक मोटी तनख्वाह मिलेगी और मजे से जिंदगी कटेगी, तो आप उसकी बात पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ी सच्चाई है कि बिना मेहनत के कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर चाहे वो गांव में हो या शहर में।
बिल्कुल भैजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि अगर कोई शहर के बारे में गांव के सीधे साधे लोगों से लंबी लंबी हांकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ।
दोस्तों अक्सर पहाड़ों से निकलकर लोग जब शहरों में आते हैं तो उनके सामने समस्या आती है बच्चों के स्कूल में एडमिशन की, बच्चों की पढ़ाई की। तो हमारे सेगमेंट काम की बात में आज हम इसी विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या हल है।
दोस्तों शहर में आने के बाद अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक वर्तमान रेजिडेंशियल प्रूफ या आवास प्रमाण पत्र और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, जो कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर या पिछले स्कूल के प्राध्यापक द्वारा साइन किया गया हो।
जबकि कुछ प्राइवेट स्कूलों में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत तो पड़ेगी ही, साथ ही आपके बच्चे को एक टेस्ट भी देना होगा जिसमें बच्चे की योग्यता की जांच की जाएगी कि उसे जिस क्लास में एडमिशन दिया जाना है वो उसके योग्य है या नहीं। साथ ही बच्चे का एडमिशन स्कूल में सीट की मौजूदगी और स्कूल प्रशासन पर भी निर्भर करता है। इस संबंध में अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप वहां के शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहां के नंबर हैं 01368222986 और 223495। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहां के शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहां के नंबर हैं 01125324422 और 26152160।
और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप वहां के शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहां के नंबर हैं 02228652367 और 24142342। तो दोस्तों ये तो थी बच्चों के एडमिशन को लेकर बात, और अगर आप किसी अन्य विषय से जुड़ी जानकारी हमसे चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176782। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी जरूरत की पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये तो थी काम की बात, और अब वक्त हो चला है उस खुशनसीब विजेता की चिट्ठी को पढ़ने का, जिनकी चिट्ठी को चुना गया है हमारे आज के सेगमेंट आपकी चिट्ठी के लिए।
नरेन, हमारे सेगमेंट आपकी चिट्ठी के लिए आज मैं चिट्ठी पढ़ूंगी नहीं।
क्यों?
क्योंकि आज की ये चिट्ठी हम अपने विजेता श्रोता टिहरी गढ़वाल के JL ममगई जी की ही आवाज में सुनेंगे। इस चिट्ठी में JL ममगई जी ने अपनी एक दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना बयान की है।
हाँ, हमारे साथ एक दफा ऐसा वाक्या हो गया। दिल्ली से हम घर आ रहे थे ऋषिकेश के लिए, तब जो है एक लेडीज के जेंट्स पानी लेने के लिए बाहर गए और इतने में बस चल दी। हमने बाहर बहुत इंतज़ार करी, बस अड्डे के अंदर उनको ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिले। आखिर में वहाँ से बस आधा पौने घंटे बाद चल पड़ी और उसके बाद मोबाइल भी उन्हीं की लेडीज़ के पास था और फिर उन्होंने मोबाइल पे फ़ोन किया। फिर हमने उनको बताया कि भाई हम तो सादरा पहुँच गए, उनके रिलेटिव भी कोई साथ थे। फिर उनको ऋषिकेश में उन बच्चों को हम लोग मुसाफिर लोग लेके आए हैं और ऋषिकेश में उनके हस्बैंड जब आ गए हैं दिल्ली से, तब हम वहाँ से उनके हैंड ओवर करके फिर अपने अपने गाड़ियाँ पकड़ी।
इस चिट्ठी को सुनकर तो हम यही कहेंगे कि किसी के साथ की हुई अच्छाई हमेशा फलदायी होती है।
और फिलहाल तो ये फल है एक सुंदर सा ट्रैवल बैग जो ममकाई जी ने हमारे सेगमेंट आपकी चिट्ठी में जीता है। ममगाई जी आपको बहुत बहुत बधाई हो।
दोस्तों ममगाई जी की तरह आप भी जीत सकते हैं ऐसा ही आकर्षक इनाम। बस इसके लिए आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभवों के साथ भेजते रहिए चिट्ठियाँ।
और अब सुनते हैं वो संदेश जो हमारे श्रोताओं ने अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भेजे हैं।
हमारे पास जो SMS आए हैं उनमें से कुछ को चुनकर हमने फोन पर रिकॉर्ड किया है, तो आइए सुनते हैं ये रिकॉर्डेड संदेश।
मैं रंजीत जसपुर से बोल रहा हूँ, जिला बिजनौर से। मैं अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि मैं ठीक ठाक हूँ यहाँ पर, और जो मेरे दोस्त हैं जो कोर्स कर रहे हैं वो अच्छे नंबर से पास हो, मेरी दुआ है उनके लिए, मेरी दुआ है कि वो अच्छे नंबर से पास हो। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ।
मेरा नाम सुमित है, मैं जिले बागपत गाँव रंगसर से बोल रहा हूँ। मैं अपने दोस्त सनी को SMS करना चाहता हूँ कि वो मेरे पास कॉल कर ले। बहुत दिन हो गए कि उनकी जॉब लगी है, ये थोड़े इनकी जॉब लगी है, तुम मेरे पास कॉल नहीं करोगे तो।
मैं कैलाश भट्ट छू बनू, मैं फिलहाल दिल्ली बिटिन छू बनू और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बिटिन है, मेरे गाँव कोटमा कालीमठा नजदीक मेरे गाँव। मैं फिलहाल नौकरी छू बनू यहाँ दिल्ली में और मैं रिवार देना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों थे, अपने सब गुरु जी थे और अपने सब रिश्तेदारों थे जो रोना जो मेरे को मरोना। अरे बार मेरी अंश कि सब लोग जो भी तक छा कुशल मंगल रहा, मैं यो ठीक छू और जो भी काम करना अपरो मन लगी थे करने, फिलहाल मैं तो यो बढ़िया छू। और अपने सब शिक्षक लोग थे जिन मैं पढ़ाई तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मैं कि आज तुमको वजह से मैं ये आज अपर पाँव में खड़े छू। परिवार देगड़ी बुझाए गुरु जी देगड़ी अपने दोस्त देगड़ी सब परिवार जो चाहूंगा मैं कि सब लोग ठीक रहे खुश रहे, मैं बढ़िया छू।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपके संदेश आपके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों तक जरूर पहुंच गए होंगे। तो अंजलि चिट्ठी शामिल की जा चुकी है, संदेश पहुंचाए जा चुके हैं, अब
वक्त हो चला है अपने दोस्तों से विदा लेने का। लेकिन दोस्तों हमें अपने प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप कोई और भी प्रवास से जुड़ी जरूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए, हमें SMS कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी जरूरत से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएं।
इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज भणज और दिल्ली और मुंबई के हमारे सभी सामुदायिक संवाददाताओं का।
और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आईडियोसिंग मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
साथ ही हम अपने प्रवासी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आप मिलजुल कर अपना एक क्लब तैयार कीजिए ताकि आप अपने जैसे प्रवासियों की मदद कर सकें। अपनी जानकारी और मनोरंजन के लिए आप कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित कर सकते हैं।
अगर आप ऐसे क्लब के सदस्य हैं तो अपने क्लब की गतिविधियों के बारे में हमें चिट्ठी द्वारा जरूर बताएं ताकि हम कार्यक्रम के अगले एपिसोड में इसकी जानकारी और प्रवासियों तक पहुंचा सकें और वो आपकी गतिविधियों का लाभ उठा सकें। हमारा पता है
कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
तो इसी के साथ इजाजत दीजिए,
नमस्कार।
जब चले शहर की ओर।